الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدني چینل غازی الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کی شان جان آن پر جن کے ذریعے سے یہ پروگرام ہوتا ہے مفتی علی اصغر عطاری مدنی مندرج اللہ العالی درود پاک کی فضیلت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے. جی جناب
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض کمپنیز دکانداروں کو یہ آفر کرتی ہیں مثلا کہ آپ 25,000 کا یا 50,000 کا پھر اس کے اندر بارگیننگ چلتی ہے کہ اتنے تک اگر آپ مال خرید لیں گے تو کمپنی آپ کو ایک فریج دے گی جسے آپ اپنی دکان پر استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر اگر کوئی خرابی بھی آتی ہے تو اسے ٹھیک کروانا بھی کمپنی ہی کی ذمہ داری ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے اندر ایسی شرط لگانا کیسا؟
جی مفتی صاحب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرط جو ہے وہ خود ایک بہت تفصیلی باب ہے. خرید و فروخت کی خرابیوں کے تعلق سے شرط پر بحث کی جاتی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سودوں میں شرطیں لگانے سے منع فرمایا ہے. تو بہت ساری شرطیں ایسی ہیں جن کا لگانا جائز نہیں ہے, لیکن کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کا لگانا جائز ہوتا ہے, بلکہ بعض کا تو واجب ہوتا ہے. جیسے فریقین آپس میں طے کریں کہ مال پہنچ پر دیا جائے گا یا خریدار کو اٹھانا ہوگا, اب کسی ایک شرط پر یہ رضامندی ظاہر کریں گے تو یہ وہ شرطیں ہوتی ہیں عقد جس کا تقاضا کرتا ہے, ایگریمنٹ کے اسٹرکچر کا وہ حصہ ہوتی ہیں. جیسے خریدار کہے کہ بھائی مال تم نے تول کے مجھے دینا ہے, میں تلوا کے لوں گا ایسے نہیں لوں گا, تو یہ تو ایک بہت ہی نارمل شرط ہے, اس کو لگانی چاہیے, اس کا ایک بنیادی حق ہے. ایک شرط وہ ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ کے اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے لیکن اس شرط میں عرف قائم ہو گیا. جیسے وارنٹی وغیرہ جو چیزیں ہیں پہلے کہاں ہوتی تھیں, آپ کہتا جی ہم وارنٹی بھی اس کی لیں گے ایک سال کی, ہم صحیح کر کے دیں گے. تو اس شرط پر یا اس طرح کی جو شرطیں ہیں ان پر عرف قائم ہو چکا ہے اور براہ راست کسی نص کی مخالفت بھی نہیں کرتی, ایسی شرطوں کو علماء نے جائز کہا ہے. آپ نے جس مثال کا ذکر کیا ہے کہ وہاں دراصل معاملہ شرط کا نہیں ہے, عارضی طور پر اس طرح کی پالیسی آتی ہے اور ایک انعام کے طور پر آفر کی جاتی ہے. بعض کمپنیاں تو پورا ٹیکس لکھ کے نیچے وہاں اسٹار لگا دیتی ہیں, اسٹار میں تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ بات کبھی بھی ختم کی جا سکتی ہے کمپنی کی طرف سے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت انعام کی ہوتی ہے, تو خریدار کو ایکسٹرا انعام دینا اس میں کوئی شریف خرابی نہیں ہے, جائز ہے. بعض جو بڑے مارٹ ہوتے ہیں سپر اسٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا مال خریدیں گے تو کل اندازے میں شامل ہو جائیں گے, تو پھر وہ کل اندازے کے ذریعے انعام نکلے تو وہ دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں یہ حلال ہیں جائز ہیں, ان میں شرعی خرابی نہیں پائی جاتی.
تو بعض اوقات کمپنی جو پروڈکٹ دے رہی ہوتی ہے بعض تو وہ طے شدہ ہوتا ہے, وہ حکم جو بھی ہے وہ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کے استعمال کے لیے ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروڈکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں, وہ پروڈکٹ کے ساتھ ہی دی جاتی ہیں. جیسے فریج کی انہوں نے مثال دی ہے, عموماً جو ہے یہ سافٹ ڈرنکس جو ہوتی ہیں یہ کمپنیز دیتی ہیں کہ جی آپ اس میں ہماری پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اسٹیکرس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس میں ان کی پروڈکٹ رکھیں. لیکن اگر اس فریج کو یا اس آئٹم کو کسی اور پروڈکٹ کے لیے بھی یوز کیا جائے تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟
دیکھیں آپ چلے گئے دوسری طرف, جو مشروبات کی جو دکانیں ہوتی ہیں,
جی جی,
کولڈ ڈرنک کی جو دکانیں ہوتی ہیں,
جی جی,
تو اس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں فریج وغیرہ, بعض کریانہ پہ بھی رکھی ہوتی ہے, تو ان کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہماری کمپنی کا ہی مال رکھیں گے. تو अब फ्रिज जो उन्होंने दिया है वो किसकी मिल्कियत में ये देखा जाएगा,
ठीक है।
दुकानदार की मिल्कियत में है, और अखलाकी तौर पर ये शर्त रख ली है, ये बात अखलाकी तौर पर बोल दी है तो हर्ज नहीं है। बारह देखा यह गया है कि उसके अंदर दूध वाले ने अपनी बोतलें रखी होती हैं, दूध की बोतलें,
जी,
वो तो उस कंपनी की नहीं है।
किसी भी कंपनी की नहीं, उसकी अपनी है।
तो कंपटीशन के अंदर जो है ना, कंपटीटर जो है वो चाहता है कि मेरा माल जो है खरीदा जाए। तो ये एक एमओयू है असल में, ये खरीदारी का वो नहीं है, हिस्सा नहीं है। एक एमओयू इनका साइन हुआ हुआ है कि भाई आप हमसे काम करेंगे, हमसे काम करेंगे तो हमसे काम करें आप, ठीक है। तो यूँ होता है, जिस तरीके से एजेंसियाँ होती हैं कि घी तेल की एजेंसी है, एक बंदे ने एक घी की प्रोडक्ट रखी हुई है, दूसरे ने दूसरी रखी हुई है,
जी सही,
तो यूँ अब वो एक ही कंपनी का माल बेच रहा है क्योंकि उसका एमओयू एक कंपनी के साथ साइन है, अंडरस्टैंडिंग उसके साथ उसकी है, तो वहाँ फिर उसको उसके साथ चलना होता है।
अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि एक जानने वाले के पास मैंने ऐनक का फ्रेम पसंद किया और उसको कहा कि मेरी नज़र का इसमें शीशा लगा दो, नंबर उसको बताया। उसके बाद उससे मैंने रेट पूछा तो उसने कहा कि अगले दिन व्हाट्सएप पर पूछ लेना, और उसने कहा 2 दिन बाद बन जाएगा। लेकिन अगले दिन फोन पर उसने जवाब नहीं दिया, और उससे अगले दिन उसने कहा कि आपका चश्मा भी तैयार है और आपका ये रेट है उसका। तो वो रेट मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत महंगा था। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा?
देखिए, रेट मुकरर करना ज़रूरी है, उसकी वजह यही है कि आपस में जो है वो तनाज़ा ना हो। तनाज़ा होना जो है गुनाह की बात है, इतना इबहाम होना कि बात तनाज़ा तक पहुँचती है, तो ऐसा सौदा करना गुनाह की बात है। तो जो सूरत आपने बयान की है उसमें उजरत मिसल का मुस्तहिक होगा, जो मार्केट में उतना काम करने की उजरत दी जाती है। अच्छा, ऐनक में ये भी होता है कि बाज़ औक़ात उसने काम ही नहीं किया होता बल्कि वो चीज़ लगाई भी होती है, जैसे शीशा लगाया उसने, तो एक तरह से ये भी उजरत ही का हिस्सा होता है। तो जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी जो भी हुई है वहाँ पर, उसकी जो मार्केट वैल्यू बनती है, उस मार्केट वैल्यू में उसको कंप्रोमाइज़ किया जाएगा।
मुझसे ये जो सूरत हाल बता रहे हैं और जो आपने बयान फरमाई कि मार्केट वैल्यू में कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, अब वो ज़्यादा बोल रहा है, ये कम बोल रहा है, कहीं पे एडजस्टमेंट हो नहीं रही, तो क्या ये छोड़ सकते हैं? अगर फ्रेम जो है, फ्रेम हमारा अपना था, जैसे बाज़ औक़ात होता है कि जो नज़र का चश्मा यूज़ करते हैं उनका ग्लासेस टूट गए, फ्रेम मौजूद है, ग्लास फ्रेम दिया है कि इसमें लगाने, तो अब ये सूरत हाल आ गई, तो ये तो एक रेट कह रहे हैं लेकिन वो उस पर मान नहीं रहा, तो क्या किया जाए?
मेहरोज भाई, किताबी बातों में और प्रैक्टिकल दुनिया में बड़ा फर्क है,
बिल्कुल
ठीक है। मानने का फार्मूला तो मैंने बता दिया,
सही, ठीक
ठीक है ना, ये वो बात है जो किताबी बात है
है
कि उजरत मिसल वो लेगा।
जी।
अब उसके दिल में खौफ खुदा है, शरीयत पर अमल करने का जहन है, तो वो इस पर अमल कर लेगा।
ठीक है,
उसका जहन नहीं है तो वो अपनी बात से पीछे हटे ना हटे, उसकी मर्जी है। लेकिन बात है गुनाह और सवाब की, गाहक को इस बात की इजाज़त तो नहीं है कि अपना नुकसान करेगा।
ठीक है,
ये उस मसले को अगर हम देखते हैं, वो मानता ही नहीं है, क्या करेगा, इसके पास क्या इख्तियार है।
वही ऑफर ही कर सकता है।
चश्मा इसका फ्रेम मिसाल के तौर पर ज़्यादा महंगा था, ठीक है, इसकी चीज़ जो है वो ज़्यादा महंगी है, फिर वो जो बंदा है उसका हक आप बिल्कुल ही ना दें, ये भी शरीयत नहीं कहती। तो बात जाके उजरत मिसल पर अगर मामला हल नहीं होता, यही हुक्म है, इसी पर अमल करना है। लेकिन एक अगली सूरत आई थी जबर वाली, तो जबर वाली सूरतों में तो बंदा मजबूर होता है, जबर के मामला ही अलग है फिर।
ठीक है, वो सर अगर ये जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, क्लियर हो जाए थोड़ा, बात चल गई है, तो मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी 2,000 रुपये चार्जेस होंगे और ये कह रहे हैं कि 1,500 या 1,600 होंगे, अब ये बढ़ते नहीं है, वो कम नहीं होता, लेकिन क्योंकि दुकानदार तो अपना काम कर चुका, मैं समझता हूँ कि दुकानदार को ही राजी होना पड़ेगा इस पर, क्योंकि उसके लिए तो वो चीज़ ऐसी काम की रहेगी नहीं,
सही,
तो अगर दुकानदार राजी तो हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नागवारी के साथ और नाराजगी के साथ वो राजी हो रहा है, तो इसमें कस्टमर पे कोई मतलब मुआवजा
नहीं,
होगा?
उजरत मिसल से कम अगर नहीं बन रहा तो कस्टमर पे कोई गुनाह नहीं है।
अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मुफ्ती साहब, मैंने अपने एक दोस्त के लिए तकरीबन सेल में तकरीबन 1,500 की चीज ली थी। वो तकरीबन डिस्काउंट था, तकरीबन एक महीने तक चल रहा था, उसके बाद जो है ना वो डिस्काउंट खत्म हो गया। वो 1,500 की चीज 3,000 में हो गई, तो क्या मैंने अपने दोस्त से जो मैंने अपने 1,500 रुपये लिए थे, क्या मैं उससे डबल करके 3,000 वो ले सकता हूँ, जो मैंने जो चीज़ उनको दी थी जो डिस्काउंट की थी, क्या ये तरीका सही है या फिर गलत, इरशाद फरमा दीजिए।
आपने दी थी का क्या मतलब है, इस्तेमाल के लिए दी थी, उसको बेची थी, क्या किया था, ये तो वाजे करें ना। अगर आपने बेच दी थी डिस्काउंट रेट में तो वो चीज़ का मालिक बन गया, चीज़ उसकी हो गई, रात गई बात गई, अब तो मामला बेच तो ही नहीं सकता ना, माजी में तो आप झाँक ही नहीं सकते, हाल की बात करें आप, आज अगर वो खरीदने आए तो आज के भाव में भेज दे।
मुस्तफ़ वैसे ऐसी सूरत हाल में ये भी तो होता है ना कि खरीदो फरोख्त असलन नहीं हो रही होती, बल्कि मिसाल के तौर पर मैं गया हूँ, अच्छी चीज़ नज़र आई और सेल लगी हुई है, कम रेट पे मिल रही है, तो मैंने किसी दोस्त का मिजाज देखते हुए उसके लिए ख़रीद ली, अब उसे दे रहा हूँ मैं, तो ये भी खरीदो फरोख्त ही कहलाएगी क्लियरली, या उसने मुझे कहा था कि भाई आप जा रहे हो देख लेना कोई चीज़ मिले तो ले आना।
देखें ये बात तो बड़ी सादा सी है, बाजू का इतना तकल्लुफाना माहौल होता है, गैर तकल्लुफाना माहौल होता है कि जो लेके जा रहा होता है वो पैसे लेगा ही नहीं इससे, तो ये मामला चला गया गिफ्ट के ऊपर।
सही,
मामला अगर जा रहा है खरीदो फरोख्त पे तो जो मार्केट रेट पे उसने खरीदी है जितने की खरीदी है उतने की उसको देगा ये, सिवाय ये कि खुद व्यापारी हो खुद दुकानदार हो, पता है उसको कि भी अपना नफर रख के फिर मुझे बेचता है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
हमारे भाई ने ना वाली साहब की प्रॉपर्टी पे ऐसे लगा के बनाया है, अब हम लोग भाई लोग बेचना चाह रहे हैं, ये बोलना है इसमें जो मैंने पैसे जो लगाए हैं वो मेरे को अलग से चाहिए, जो मैंने पैसे लगाए हैं उसके बाद इतना बढ़ती है, इसके बारे में सर अगर फरमा दें क्या है सही है क्या गलत।
देखिए जब कोई बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी में पैसे लगाता है तो कई सूरतें होती हैं, ज़्यादा पाए जाने वाली सूरतों में से एक ये है कि जैसे शादी होने लगी है बेटे की, तो बाप कहता है कि भाई बेटा एक कमरा तुम अपने लिए बना लो, वो घर के ऊपर बना लेता है मिसाल के तौर पर, अब उसी में वो रह रहा है, बाप का इंतकाल हो गया, अब ये बेटा कहता है कि भाई ये कमरा तो मैंने अपने पैसों का बनाया था, जो विरासत हो रही है या तो ये कमरा मुझे ही दो विरासत से हटके, या ये है कि मुझे इसकी कोई अमाउंट ज़्यादा दो, तो इस सूरत के अंदर तो हुक्म यह है कि को कहा जाएगा कि भाई ये जो मलबा है ये आपका है, आप चाहें तो उसको उखाड़ लें, बशर्त ये कि इमारत को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ इसका इतना राइट है, ये एक मुमकिन सूरत है। दूसरी मुमकिन सूरत ये होती है कि जिस तरीके से औलाद जो है वो अपनी तनख्वाह से एक बड़ा हिस्सा वालदेन को दे रहे होते हैं, वो उसमें राशन में खर्च कर रहे होते हैं, घर का चूल्हा चल रहा होता है, तो इसी तरीके से जब कोई बड़ा खर्चा निकलता है, घर में कोई शादी निकलती है तो सब बच्चे हिस्सा मिला लेते हैं, घर में तामीरात शुरू हुई तो सब बच्चों ने हिस्सा मिला लिया, तो या तो ये बाप को कर्ज दिया उन्होंने, या एक रजामंदी और खुशी से बाप की मदद कर दी है जो आमतौर पर घरों में होता है, तो अगर तो मदद वाला पहलू है तो वापस कुछ नहीं ले सकते, कर्ज वाला पहलू है तो इनको दावा करना पड़ेगा हमने तो कर्ज दिया था, ठीक है इसकी गवाही भी इनको लेकर आनी पड़ेगी कि माली मामला है कि इन्होंने वाकई कर्ज दिया था, तो फिर ये है कि जितने पैसे लगे थे माजी में जो कर्ज के तौर पर इन्होंने दिए थे वो पैसे ही अलग से ले सकते हैं, तो इस मसले की बहुत सारी सूरतें हैं। नाज़रीन कराम ये तो एक बंदे का मसला था कि जिन्होंने पूछा अभी हमसे, पता नहीं कहाँ से सवाल आया हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह मसला हर घर का है, हर घर में ये सूरत हाल पेश आ सकती है, ऐसे मौके पर तय कर लेना ज़रूरी है कि भाई मैं किस फार्मूले के तहत ये पैसे लगा रहा हूँ। कर्ज वाला जो पहलू है काफ़ी हद तक सेफ साइड पर होता है और मोतदल भी है, मोतदल इल्माना में है कि बेटे को लगता है कि जी इतना बड़ा खर्चा करके भी विरासत में मुझे उतना हिस्सा मिल रहा है, इसने खर्चा नहीं किया, अगर कर्ज साइड को देखा जाए तो उसको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन लालच वहाँ शुरू होता है कि जी मैंने तो 5 साल पहले दिया था, मैंने तो 20 साल पहले दिया था, ठीक है आज तो डिवेली होगी रकम, तो भाई आप कर्ज ही देना तो आप सोने में कर्ज दे दें, सोने में भी कर्ज देना जायज़ है, किसी ने मिसाल के तौर पर 2 तोला सोना 24 कैरेट का किसी को कर्ज दिया तो ये 2 तोला सोना ही वापस लेगा 24 कैरेट का, तो मार्केट जो डी वैल्यू होने का इशू है वो यहाँ नहीं रहेगा, तो और सबसे जो अफजल और बेहतर सूरत है वो ये है कि वालिद साहब की मदद कर दी जाए, कितने ऐसे खर्चे हैं जो हम पर कर रहे होते हैं, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उनकी मेहनत का सिला है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्लियरिटी रखनी चाहिए, बेशक दो भाइयों के दरमियान डील हो, वालदेन और औलाद के दरमियान डील हो, क्लियरिटी रखना बेहद ज़रूरी है।
सब, ये तो बहुत तफसील से माशाल्लाह आपने जवाब इरशाद फरमाया। मैं एक बात पूछना चाहूँगा जो देखी भी है माशरे में, कि ऐसे मौके पर जो ये सूरत हाल बयान कर रहे हैं, बाज़ अवक़ात ज़िद का पहलू गालिब आ जाता है, क्योंकि यानी एक तो होती ना मजबूरी है, हर जगह मजबूरी नहीं होती, बाज़ अवक़ात वेल ऑफ होता है बंदा, लेकिन उसको ज़िद का पहलू आ जाता है कि नहीं मैं तो ये
जिद के असबाब होते हैं, जिद वहां आती है कि बंदा कहता है कि मेरी यहाँ हक तलफी हो रही है, मुझे मेरा राइट नहीं मिल रहा। तो पहले तो उसको तय करना चाहिए कि उसका राइट है या नहीं,
ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो
ये
जाए।
क्लियर करना चाहिए।
सही,
शरीय एतबार से राइट बाज़ुकात होता ही नहीं है। ऐसी खबरें मैंने अखबारों में पढ़ी हैं कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बाप जिंदा है अभी, क्यों? कि भाई जायदाद से हिस्सा दो। अरे भाई, बाप जब जिंदा है तो जायदाद से हिस्सा तो बनता ही नहीं है, लड़ाई किस बात की है, जो कुछ है वो बाप का है। ठीक है,
ठीक है,
तो यहाँ जिद इतनी पैदा हुई कि बाप को कत्ल कर दिया, माज अल्लाह, सुमा माज अल्लाह, किस सोच की वजह से कि बाप जालिम है, हमें हिस्सा नहीं देता। भाई उसका माल है, तरका तकसीम करना उस पर वाजिब नहीं है। हम बाज औकात सूरतहाल होती है कि औलाद को पांव पर खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत होती है, वालदेन अगर उसकी कुछ मदद करें, कुछ हेल्प आउट करें, कुछ लाइन दें तो उनको फायदा पहुंचता है, वरना वो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो चाहते हैं हम पहले स्टार्ट करें। बाद अवत वालदेन कहते हैं कि भाई मैं इस पर भरोसा कैसे करूँ, इसको तो खाली पैसे चाहिए, लाइन तो उसके पास है ही नहीं,
ठीक,
तजुर्बा तो है ही नहीं, तो सारे ज़ाया कर देगा। तो यूं इस तरह की जो उलझने हैं, इसका सबसे जो मौसर तरीका है वो टेबल टॉक है। आप बैठे हैं, बातचीत करें, मुशावरत का माहौल हो, डिक्टेशन का माहौल ना हो, वालदेन बच्चों की सुने, बच्चे वालदेन की सुने, आपस में एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा तो चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आती हैं।
मुझसे एक सवाल है हमारे पास कि इन्होंने तो ब्यूटी क्रीम लिखा है, लेकिन शायद कॉस्मेटिक का शॉप का कहना चाह रहे हैं कि कॉस्मेटिक शॉप हो और अगर वहाँ पर सामान जो है वो निसाब के बराबर पहुँच जाए तो क्या उस पर ज़कात वाजिब होगी?
देखिए, बेचने के लिए जो माले तिजारत है उस पर ज़कात है। किसी खातून ने मेकअप का सामान इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, उस सामान पर ज़कात नहीं है।
ठीक है, अगर ये सामान्य तिजारत है जैसे कि बयान कर रहे हैं कॉस्मेटिक शॉप वगैरह है तो फिर इस पे भी
वो तो बेचने के लिए, किसी के ज़ाती इस्तेमाल का सामान मौजूद है, बेशक वो महंगा है, क्योंकि जो यूरोपियन ब्रांड जो हैं वो तो बहुत महंगी होती हैं,
जी
तो बहुत महंगा है, एक निसाब के 50 निसाब को पहुंच जाए, तो चूंकि ये वो चीज़ है जो काबिले ज़कात माल नहीं है, माल तैयारत नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है।
ठीक है, मुझसे एक हमारे पास सवाल है यहाँ पे, इन्होंने तो एक स्पेसिफिक सवाल किया है, मैं उसे जनरलाइज करके कर देता हूँ ताकि इनको भी जवाब मिल जाए। इन्होंने सवाल किया है कि वक्फ के इदारों में सदकात के पैसे इजाफी तौर पे लगाना, यानी डेकोरेशन करना, सजावट करना या उनकी जिबाइश करना, इन्होंने मुख्तलिफ एक चीज़ बयान की है, सेलिंग करना, छत जो बनती है वो बयान की है, तो इजाज़त होगी या नहीं?
देखिए, बात यह है कि सदकाते वाजिबा जो है उसका अपना एक इस्तेमाल है, नफली जो अतियात हैं उनका अपना एक इस्तेमाल है, और जैसे दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी के अंदर एक पूरा शोबा कायम है शरिया एडवाइजरी का, और ये शोबा 3 जगहों पर कायम है, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में। और जो शोबा जात हैं दावत इस्लामी के मजालिस जो हैं, ये पाबंद हैं कि आप जो है वो शरीय रहनुमाई करके कोई नया काम करेंगे शरीय रहनुमाई लें, वो तामीरात के ताल्लुक से है, वो एचआर के ताल्लुक से है, वो तरमीम के ताल्लुक से है, वो मद और ख़र्चों के ताल्लुक से है, तो उलमा से रहनुमाई लेके और फिर जो नहीं खर्चे किए जाएँ। कितने ऐसे केस आते हैं कि दारुल तक तो से मना कर दिया जाता है कि जी सदकाते वाजिबा का पैसा यहाँ खर्च नहीं हो सकता। तो यूं जो मदारिस की अगर बात की गई है कहीं, तो देखा जाएगा कि वो क्या ऐसा प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा इवेंट है, और जो सीलिंग है छत की, ये भी हर जगह खूबसूरती के लिए नहीं होती। بعض جگہوں پہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. یعنی ایک مرتبہ میرے ایکسپرٹ سے بات ہوئی, تو وہ اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سیلنگ سے اگر مطلب اوپر چھت نہیں ہے, ڈائریکٹ سورج کی تپش اس پر پڑتی ہے چھت پر, اور اس کے اوپر کوئی فلور نہیں ہے, اگر آپ سیلنگ کروا لیتے ہیں تو 3 سے 4 ڈگری تو صرف سیلنگ سے کم ہو جاتی ہے تپش,
کور ہوتی ہے تپش,
کور ہو جاتی ہے. تو وہ بھی گیپ رکھنا پڑتا ہے چھت کے درمیان اس کے درمیان, اور تھرماپول اگر لگا دیا جائے چھت پہ اور پھر گیپ رکھا جائے تو یہ ریشو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یوں یہ جو چیزیں ہیں بعض اوقات لائٹنگ کی وجہ سے کروائی جاتی ہے, کہ سیلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ جو لائٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور پراپر ہو جاتی ہے. اسٹڈی ایریا کے اندر اگر ایسی لائٹ ہو جو اوپر سے پڑ رہی ہے تو وہ لائٹ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے, بہت اچھی ثابت ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ جس طرح ٹیوب لائٹیں لگی ہوتی ہیں ہماری دیواروں کے اندر تو وہ آنکھوں میں پڑتی ہے براہ راست. تو اس وقت ایک عالمی اسٹینڈرڈ بھی یہ بن چکا ہے کہ آپ ہوٹلز میں جائیں یا ایئرپورٹس پر جائیں, ہاسپٹلس میں جائیں, تو لائٹیں اس طرح کی لگی ہوئی نہیں ہوتی کہ آپ وہ ٹیوب لائٹوں کی طرح کہ وہ آنکھوں پہ پڑیں, بلکہ لائٹیں جو ہے نا وہ ہڈن لائٹیں ہوتی ہیں یا پھر کم از کم چھت سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں تاکہ لائٹ کا جو کام ہے وہ ہوتا رہے اور لائٹ اس میں اچھی پھیلتی ہے. تو یوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سائل نے جس کا تذکرہ کیا اس کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں ہوتی بلکہ اچھا سیلنگ بہت سستی ہے.
جی,
ایک اگر 12x12 کا کمرہ ہے
جی,
آج کل کا ریٹ کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, پہلے تو 10-12 ہزار روپے کی یہ ہو جاتی تھی.
مطلب وہ تو کوالٹی وائز
جسم جسم یوز ہوتا ہے اس میں اس میں اتنی مہنگی ہے نہیں.
سر ایک اور بات بھی ہے نا, آپ تو یہ ضرورت کے تحت جواب دے رہے ہیں, اگر بال فرض ہم مان لیں گے جی سے موسم یا گرمی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, تو عرف و عادت کے تحت اس کی اجازت نہیں ہوگی ہماری یہاں, کہ ہماری یہاں تو نارملی اب جو گھر بن رہا ہے, مدارس بن رہا ہے, مساجد بن رہی ہیں, نارملی لگ رہی ہوتی ہیں, کوئی ڈھکا چھپا کام تو ہے نہیں. اور پھر یہاں پہ میں ایک بات اور بھی پوچھنا چاہوں گا,
مساجد میں صدقات واجبہ لگانا تو جائز نہیں ہے نا.
جی مساجد میں تو
ہاں.
مجھے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا, ویسے تو ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے لیکن چلیں یہ بات چلیے تو اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات کیونکہ مختلف افراد ہوتے ہیں اور یہ جو مدارس یا جامعات یا وقف ادارے ہوتے ہیں, یوں سمجھ لیجیے پبلک پراپرٹی ان معنوں میں ہوتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اس میں مشورہ دے سکتا ہے, ایڈوائس دے سکتا ہے, لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ سب کو ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی, وہ محض ایک یا دو چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی کمنٹ پاس کر دیتے ہیں, لیکن اگر ان کو کوئی جواب دیا جائے, طریقے کا جواب دیا جائے کہ جی یہ چیز یہ ہے, تو وہ خود مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. سوال کرنے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے.
یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں نا
جی,
یہ تفسیر کا ایک رخ ہے.
جی
اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں.
ٹھیک
ہے, عملی غلطیوں کی تو یہ سمجھیں کہ بھرمار ہے, بہت سارے جگہوں پہ شریعت کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا.
ٹھیک, غفلت ہے,
غفلت تاری ہوتی ہے, خاص طور پر ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں کوئی شخص جو ہے, اچھا چونکہ ایسی جگہوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں.
جی
تو وہ مذہبی لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا رجحان ہوتا ہے علماء سے پوچھ کے چلنے کا. بھی دیکھیں ہم جن لوگوں کو اس وقت باب المدینہ کی بات کرتے ہیں,
کراچی کی,
کراچی کی جن لوگوں کو ہم قائدین میں شمار کرتے ہیں, شاہ تو ابلغ صاحب کو آپ لے لیں
جی,
ٹھیک ہے, امیر اہل سنت ہو گئے اور سرکردہ بڑے بڑے علماء ہو گئے, ان حضرات نے کس کی صحبت پائی ہے؟ قاری مسعود الدین صاحب کی صحبت پائی ہے, مفتی وقار الدین صاحب کی صحبت پائی ہے.
جی
تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے, اچھا ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو بن سکتی ہے.
جی
مفتی وقار الدین صاحب کو جنہوں نے صحبت پائی ہے تو ان کا ایک ذہن ہے کہ بھائی پوچھ کے چلنا ہے, شریعت پہ عمل کرنا ہے.
جی
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آ کے علماء کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, حالات چینج ہو گئے ہیں, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تم یہ کرو, تم یہ کرو, زمانہ چینج ہو گیا ہے, کبھی آ کے علماء سے سیکھتے ہی نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, وہ سکھانے والے بنے ہوئے بن سیکھے
چودھری بنے ہوئے ہیں, سیکھتے ہی نہیں, ذہن ہی نہیں ہے. اگر کہیں ان کو کہا بھی جائے کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ یہ غلط ہے, غیر شرعی ہے, ہاں دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, ایسا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں, ایک سوالیہ نشان ہے. تفسیر کا یہ رخ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا, اور ایسے لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ نیک کام कि मुहिम में कहीं गुनाह के रास्ते पर ना चल पड़े, गुनाह से बचना जरूरी है।
मुफ्ती साहब ने यूँ समझिए एक दरवाज़ा खोल दिया आपके लिए कि खुद ही सोचें, और खुद सोचने के बाद अगर कोई रेड लाइट जलती है तो फिर किसी मुस्तनद आलिम दीन से, मुफ्ती इस्लाम से, दारुल फ़ैले सुन्नत से आप रब्ता कीजिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा, अल्लाह ने चाहा तो फिर अहकाम तिजारत होगा, आपके सवालात होंगे, जवाबात होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अहकाम तिजारत, अहकाम तिजारत।